Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazink mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम सिद्धार्थ.
आप दोनों को नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लीख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस प्लंज अमिड सेल ऑफ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. सेंसेक्स स्लिप्स बिलो 76,000 लेवल. निफ्टी शेड्स 320 पॉइंट्स. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंस slew of executive orders after assuming office, lifts restrictions on mining, encourages fossil fuel production, and directs federal agencies to review tariffs and trade relations with China, Mexico, and Canada. Over 4 crore Sukunya Samriddhi accounts opened in less than 10 years to empower girls across the country. And global crude oil prices decline. Brent crude trades at $78.83 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार में आज हुई चौतरफा बिकवाली. सेंसेक्स 76,000 के स्तर से नीचे फिसला. निफ्टी 320 अंक लुढ़का. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के साथ ही कई प्रशासनिक आदेशों पर किए हस्ताक्षर. खनन पर प्रतिबंध घटाया. जीवाश्म ईंधन को मिला प्रोत्साहन. और फेडरल एजेंसियों को चीन, मेक्सिको और कनाडा के साथ कारोबारी संबंध और शुल्क नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. देश में पिछले 10 वर्षों से कम की अवधि में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए. बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए आरंभ हुई थी यह योजना. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दामों में गिरावट. ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $78.83 बैरल के आसपास आई. घरेलू शेयर बाजार में कल देखी गई तेजी के बाद आज एक बार फिर से मंदड़िए चौतरफा हावी नजर आए आज के कारोबार में. चौतरफा बिकवाली से प्रमुख सूचकांक 1.5% के आसपास नुकसान के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1,235 अंक यानी 1.6% घाटे के साथ 75,838 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 320 अंक यानी 1.37% नुकसान के साथ 23,025 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों को सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2% की गिरावट देखने को मिली जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.9% घाटे में रहा.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स प्लंज्ड टुडे अमिड सेल ऑफ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ट्रिगर्ड बाय ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स. यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump's tariff threats targeting BRICS nations, weak third quarter earnings, and persistent foreign institutional investor selling weighed on the markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, sank 1,235 points or 1.6% to close at 75,838. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 plunged 320 points or 1.37% to settle at 23,025. The broader market indices at BSE also ended with deeper cuts. The mid-cap index shed 2% and the small-cap index declined over 1.9%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Zomato plunged over 10.9%, Adani Ports lost over 3.7%, and NTPC dropped more than 3.5%. Meanwhile, the two gainers were Ultratech Cement, which gained over 0.7%, and HCL Tech added almost 0.5%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, Realty shed over 4%, Consumer Durables lost almost 4%, and Consumer Discretionary dropped 2.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,788 companies declined and 1,187 advanced, while 113 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 26 companies hit their 52-week high, while 58 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 2 पैसे कमजोर हुआ, 86.58 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 108.73 पर चल रहा था. सिद्धार्थ जी, बाजार में कल हमने हल्की तेजी देखी, उम्मीद बधी थी कि पता नहीं क्या रुख होगा, लेकिन आज जो बिकवाली हमें देखने को मिली वो क्या संकेत दे रही और बिकवाली के आज के मुख्य कारण क्या रहे?
नहीं देखिये मनोज जी, जिस तरह की आशंका थी तो मुझे लगता है वो एकदम सही साबित हो रही है. ये डर शुरू से था और इसका बाजार में एक असर दिख भी रहा था. कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बाजार ने फैक्टर इन भी किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो टैरिफ की जो उन्होंने धमकियां दे रखी हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, और उसका उन्होंने ऑलरेडी एक संकेत दे भी
जी,
दिया
जी,
है
प्रशासनिक आदेश हाँ, जो हाँ, जी
और उन्होंने एक संकेत दिया है कि कनाडा मैक्सिको शायद पहले होंगे, फ्रंटलाइन वो देश होंगे जिसपे हो सकता है वो 25% तक की टैरिफ अमेरिका लगाए. उसके साथ साथ जो आपने कुछ ऑलरेडी उन्होंने जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर दिया है, नेशनल जो एनर्जी इमरजेंसी या मैक्सिको के बॉर्डर पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, WHO से अमेरिका बाहर आ गया है, और तो उसका जो एक फियर मार्केट में था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, टैरिफ लगाएंगे, तो उसका एक फियर जो है वो शायद मार्केट में दिख रहा है. साथ साथ क्या हो रहा है, जो अक्टूबर से जो गिरावट जो शुरू हुई थी भारतीय बाजारों में वो ट्रेंड पूरी तरह से बरकरार है. FIIs की जो सेलिंग शुरू हुई अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर में रही, दिसंबर एक अपवाद था जब थोड़ा से उन्होंने बाइंग की FIIs ने, लेकिन इस महीने भी अगर आप देखेंगे जनवरी में भी अभी तक तकरीबन 48,000 तक की जो 48,000 करोड़ के शेयर्स FIIs ने बेचे हैं. लेकिन एक उसके साथ साथ एक अच्छी बात क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से जमे हुए हैं, वहाँ कोई पैनिक नहीं है. और जो कारण आपने एक तो जो अभी राजेश ने अपनी रिपोर्ट में भी पढ़ा कि डोमेस्टिक और एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स, तो ग्लोबल में ट्रंप साहब हैं, अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो रही है, तो FIIs शायद उस वजह से भी लौट रहे हैं. वहां पे जो है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो शायद फेड उस तेजी से इंटरेस्ट रेट ना काटे. उसके साथ साथ अगर आप हमारे अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स देखेंगे, देखिए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो उस पर हम अब अच्छी जो अभी लास्ट प्रिंट आया था इन्फ्लेशन का वो भी नीचे आया है, तो मुझे लगता है उस पर कोई चिंता की बात नहीं है. GDP में थोड़ी गिरावट है, बट मुझे लगता है जो अब थर्ड फोर्थ क्वार्टर जो अब जो आंकड़े आएंगे वो बेहतर आएंगे. तो चूंकि इलेक्शंस थे तो उसकी वजह से भी 3-4 महीने का लॉस हुआ हमारे यहाँ, तो उस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ नहीं. लेकिन हाँ, एक चिंता की जो शायद जो मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है वो है उन जो कॉरपोरेट अर्निंग्स जो Q2 में भी खराब थी और जो अभी शुरुआती शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, तो उसमें ये दिख रहा है कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिख रहा है अर्निंग्स में, तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट में वो भी दिख रहा है. लेकिन जो बड़ा कारण वो जो है वो वही है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसपे हमारा कोई बहुत ज्यादा
जोर नहीं है, कोई
कंट्रोल नहीं है जिसको आप कह सकते हैं. लेकिन हाँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ. अगर आप अपना बढ़िया रिसर्च करिए, बढ़िया से देखिए, तो शायद अभी भी आपको अच्छे शेयर्स में लगाइए और थोड़ा आपको थोड़ा समय बैठना पड़ेगा.
So, Siddharth, you're very right in saying that the DIIs are holding their ground quite a bit. So, people like you and me, I mean, we are holding our ground because we believe in the system, we believe in the policies, we believe in our fundamentals. So, is that what is keeping them, afoot when it comes to the Indian markets, or they too would would sooner or later move away. If not, the question that I'm asking you is, what is making them hold strong in the Indian scenario?
See, Rajesh, as I just said, see, the basic reason why I think the domestic institutional investors, as well as people, you know, investing through the SIPs, the retail investors, I think the confidence that they bestow in the Indian market is because the Indian economy, all these fundamentals of the Indian economy are very strong, robust. Our growth numbers are good. Still, we are, if we are not doing well, so even then we are, if it is said that Indian economy is slowing down, so slowing down means we are just slowing down by a percentage point to even that is also 6.5%. So I don't think anywhere in the world we have this kind of growth number. Yeah. So fastest growing economy in the world. If you talk of our inflation numbers, if you look at our core sector data, it's also improved the last print that we have got, even the IIP index of industrial production. So I think that the slowdown, that little bit of flux that happened, especially in the Q1 and the Q2, and primarily because of elections. So that is the reason, giving the confidence to our domestic investors. And as far as FII is concerned, as we were discussing before the program also, see, what is their mantra? If foreign institutional investors traditionally and even till date, they have not proved us wrong. Their mantra is to make money. And so wherever they are making, they will make money, they will be there. So probably they are exiting Indian market, they're getting better opportunities outside India. Probably they see they are getting about 5% returns in a risk-free US market. So probably they are moving, shifting to that. But yes, the kind of strength our own markets have shown, despite FII selling, I don't see that. There is obviously, we are seeing a fall, a big, there are days when the market is going down by big number, but still there is no panic as such, because there is nothing which has happened in Indian economy which is leading to this kind of fall in Indian, since October. What is the trend? Primarily it is driven by external factors.
Yahan par Siddharth ji, ek ahem sawal jo hamare shrota hain unke liye, ye matlab keh lijiye unke dimag mein uth raha hoga ki mujhe, yani jo chote niveshak hain, unhein aise mahol mein kya karna chahiye, yani bada ghata hota unko nazar aa raha ho to unhein kya salah dena chahenge aap?
नहीं, देखिए, छोटे निवेशक या एक आम आदमी जो बाजार में है, अगर वो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो उसके थ्रू उसको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका मंत्रा यही है कि आप आज निवेश शुरू करिए और उसको लंबे अवधि तक करें. और अगर आप डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका भी जो सारांश है, जो मंत्र है, वो यही है कि आप मार्केट में पैसा लगाएं और थोड़ा धैर्य रखें और अच्छी कंपनियों में लगाएं जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो उसकी. और अभी भी अगर जब मार्केट गिर रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है. हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अच्छा स्टॉक पिक करना होगा, अच्छी अपनी रिसर्च करिए, बढ़िया कंपनी चुनिए, बढ़िया और सेक्टर देखिए जिस सेक्टर में आप लगा रहे हैं. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ये जो अनिश्चितता का दौर है, अभी तो शुरुआत हुई है. मुझे लगता है ठीक है, मार्केट ने फैक्टर इन किया है, ट्रंप साहब जब से जीत के आए थे उनके लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो वो मार्केट ने कहीं काफ़ी हद तक फैक्टर इन किया है. बट मुझे लगता है जब एक्चुअल कदम उठाएंगे, क्योंकि बाई नेचर डोनाल्ड ट्रंप, मेरे हिसाब से ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. हो सकता है जो उन्होंने कहा उसके एकदम भी हो सकता है. तो मैं कहूंगा कि अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अभी भी अच्छा टाइम है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. देखें जिस दिन कौन सा स्टॉक गिर रहा है, अपने लेवल्स थोड़े
स्टडी एंड इन्वेस्ट,
हाँ, और अपने लेवल्स डिसाइड कर लें और आप थोड़ा सा आराम से करें. और मुझे लगता है अभी भी आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छे स्टॉक में लगाएंगे पैसा तो अभी भी एक दो साल में भी आपको फायदा होगा. और हमेशा मेरी तो सलाह होगी कि थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फायदा ही फायदा होगा.
लेट्स गो बैक टू हिज, सिंस डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट पैरामाउंट इन आवर थॉट्स दीस डेज, सो इन हिज प्रीवियस टर्म फ्रॉम 2017 टू 2021, द लास्ट स्टेट हैड अंडर परफॉर्मड वॉल स्ट्रीट विद निफ्टी गिविंग 38% return as against NASDAQ, which gave roughly about 77% return. Now, in Trump 2.0, is there going to be a change in the scenario? Maybe we will have more unpredictability, as you've just mentioned. You never know what he will do next. Or will the volatility be as high as we are experiencing today?
See, Rajesh, I would say volatility would be high in the near term. Would I think we will get to see a good part of the picture in next probably 3-4 months. The outliner would be 6 months because our own fundamentals are very strong. So we will initially, you know, in near term, there would be some impact. But to say that there will be huge impact on India, I don't see that kind of a scenario. Plus, we should also not forget that Prime Minister Modi and Donald Trump have a personal chemistry also. Plus, third reason, which I would say, if you look at whatever we are hearing through media reports, is that he is expected to visit India very soon, India and China, probably. So we are in his thoughts. So he knows that we are his integral partners. Plus, if he has to play his China card also. So I think he needs to. Yeah. So he cannot avoid us. So we are also indispensable for him. Something like.
Since we're talking about Trump, let's see what he's done. President Donald Trump has signed a series of executive actions revoking 78 of Joe Biden's policies hours after returning to the White House. On energy policy, Trump has declared a national energy emergency, lifting restrictions on mining and encouraging fossil fuel production. He said America would capitalize on its vast oil and gas reserves to become a dominant manufacturing nation. Donald Trump has directed federal agencies to review tariffs and trade relations with China, Mexico and Canada, hinting at imposing tariffs up to 25% on Mexico and Canada by February 1. In one of the major orders, President Trump directed to withdraw from the World Health Organization. In his order, Trump has cited a string of reasons for the withdrawal, including the global health agency's mishandling of the COVID-19 pandemic and the failure to adopt urgently needed reforms. Trump accused the WHO of being biased towards China in how it issued guidance during the outbreak. Mr. Trump also signed an order to begin the process of withdrawing from the Paris Climate Agreement. He also invoked emergency powers to expand U.S. energy production by reversing climate-related policies and facilitating oil, gas, and mining activities. Trump has also signed an order seeking to end automatic birthright citizenship for children of people not in the country legally, as well as those in the country legally, but only temporarily, such as tourists, students, and those on work visas. Agencies have been given 30 days to implement the order. This, Siddharth, is day one.
Yeah, Rajesh, but this is on completely on expected lines. I think all this was, he had been saying this since he was, he'd won the elections. He had been continuously, you know, reiterating these, whatever decisions that he has taken in his on his first day, probably coming out of Paris Climate, I think, Accord. I think he's been saying that's very obvious. He was always against it. And WHO also, I'm sure, yeah, he's been saying that they didn't mishandle the COVID-19 pandemic. So, the energy thing, yes, obviously, yeah. One thing which I would like to say also is that on the national energy emergency, since he's pushing for more and more fossil fuels, so that is also, if you look in it at his last, the first term also, so the oil prices were very benign. They were not, no, they were at a certain level, very moderate level. So something like that, plus emergency on Mexico border. So he's been against this, illegal immigrants.
He did that in his previous term also,
I think, yeah. What, and plus probably, but one, I think, positive leaf I would still draw from his Mexico, threat to Mexico and Canada on tariffs 25%, that he said that we need to study more on China. So at least he's trying to, go guarded and, gradual.
So that the bigger issue would be pressure that will put on inflation and treasury yields if immigration and tariff policies are implemented. Possibly it will affect the capital flows into India as well.
No, that is true. Yes, that what you're saying is that can happen. But let's see. I would still say it's early days because we are a trade surplus partner with the US. So let's see how he, because it is he who has to take the first step. And only then, probably, yes, these are conjectures which are being drawn. But actual steps and what do they lead to, how much do they impact, what is the kind of, the steps that he is taking. So let's see, if they are gradual, probably we'll be able to settle with them. If they are something which disrupt our own systems, then probably we'll have to act as the situation demands.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने कहा है कि देश भर में पिछले 10 वर्षों से कम की अवधि में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इस योजना के अनुसार माता पिता किसी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में या किसी डाकघर में कन्याओं के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि खाता 250 रूपये जमा के साथ खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष कल 22 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। ये योजनाओं बालिकाओं के उत्थान, उनके उज्ज्वल भविष्य और सशक्तिकरण के लिए काफी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण समझी जा रही है। टिप्पणी करना चाहेंगे बच्चियों के लिए, हमारी जो बेटियां हैं उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में इस योजना को?
मनोज जी, मेरे ख्याल से 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से इस स्कीम को शुरुआत की थी। बेटियों के ऊपर फोकस्ड है और इसके मतलब बहुत सारे फायदे हैं। मतलब आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ साथ आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। इस पे जो ब्याज दर है वो हमेशा सरकार बढ़ा के रखती है, क्योंकि उसका फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खोलें, क्योंकि इसको प्रोत्साहित करना है कि बेटियों के लिए आप पैसे बचाएं, उनकी चाहे शिक्षा हो या जब उनकी शादी हो उस समय इन पैसों का आप जरूरत उपयोग कर सकते हैं। तो इस पे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है और आप इसको छोटे, जैसे आपने कहा कि छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं।
With an aim to curb grey market trading, the Securities and Exchange Board of India, SEBI, is planning to bring in a system where investors can sell shares as soon as they're allotted in an initial public offering. Addressing an event organized by the Association of Investment Bankers of India, AIBI, in Mumbai today, SEBI chairperson said if investors wish to sell his shares immediately post-allotment or pre-listing, it is better to give them that opportunity in a properly organized and regulated way. She added that discussions are currently underway with 2 stock exchanges to put in place the when-listed facility where shares can be traded during the 3 days between the allotment and listing. Talking about the importance of providing sufficient information in IPO documents to enable investors to make informed decision, particularly with regard of pricing, SEBI chairperson said the regulator's job is not to determine the right price of an IPO, but to ensure that investors have access to all the necessary data to assess whether the price is appropriate or not, stating that SEBI is working on developing a standard IPO template. Ms. Bush said that the regulator has started using artificial intelligence to review IPO documents. Now, all this is to control the grey market.
Rajesh, I think it's a step in the right direction. I think if you would ask me, I think we should have already done it, because what happens is, in any case, people are buying in the grey market. People are pre-listing before the allotment. There is heavy selling and buying happening. What happens is, it is only happening on base some kind of a trust between you and me. I know you and I trust you, so I buy some shares from you. And it also kind of reflects the inherent demand and in that particular share. So what this would lead to is, at least first thing is that it would make the entire thing transparent, the process. Plus it would go through the exchanges. So what it will help in, I think one of the biggest advantages would be, because currently if something happens, whom do you go to? Where do you get your redressal mechanisms, all this? So all that would come in place once there is a norm for to sell shares immediately, pre-listing or whatever. So that all that helps in kind of gives proper semblance to the entire structure.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रसेल्स में बेल्जियम के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विदेशी व्यापार पर बेल्जियम की महत्वपूर्ण निर्भरता और भारत की गतिशील बढ़ती अर्थव्यवस्था को पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता की प्रगति पर भी चर्चा की और वार्ता को सुव्यवस्थित करने तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार मुद्दों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। भारत और बेल्जियम के बीच 2023-24 में व्यापार 15 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि बेल्जियम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 4 अरब डॉलर होने का अनुमान है।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान अलोंग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी इनॉग्रेटेड द इंडिया पवेलियन एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन डेवोस स्विट्जरलैंड। Mr. Paswan said India's progress will benefit the entire world. Talking to media, Mr. Paswan said he's looking forward for good collaborations globally, adding that the Narendra Modi government wants India to become a global food basket. Later, Mr. Paswan had a meeting with CEO of Coca-Cola, Enrique Braun, on strengthening the food processing sector and promoting sustainable practices. He said, through this collaboration, they will work towards taking the Indian industry to newer heights. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Telangana Chief Minister Revanth Reddy were also present on the occasion along with other Indian leaders. In a social media post, Mr. Fadnavis said the Indian Pavilion is making a significant moment for India on the global stage. Meanwhile, Maharashtra has signed multiple MOUs worth 38,750 crore rupees in the ongoing World Economic Forum. In the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis, the maiden MOU signed between the government of Maharashtra and Kalyani Group covers the defence, steel and electric vehicle sectors. This agreement is expected to attract an investment of 5,250 crore rupees and generate 4,000 jobs in Gadchiroli. The second MOU worth 16,500 crore rupees was signed between the government of Maharashtra and Reliance Infrastructure Limited in defence sector and is expected to create 2,450 job opportunities. The third MOU signed with Balasore Alloys Limited focuses on the steel and metals industry and will create 3,200 jobs.
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख दिखा है। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% लाभ में रहा। जापान के निकेई 225 में 0.32% की तेजी आई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट टाइम्स इंडेक्स 0.33% नीचे बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो वहां भी मिला जुला रुख था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.6% की वृद्धि थी। जर्मनी का डेक्स 0.1% नीचे चल रहा था।
यूएस मार्केट्स वर क्लोज्ड यस्टरडे ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द थर्ड मंडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर। Oil prices declined today as investors assessed U.S. President Donald Trump's plan to apply new tariffs later than expected and his promise of filling up strategic reserves and exporting American energy all over the world. Brent crude was trading over 1.5% down at $78.83 per barrel, and WTI crude was also tanked over 2.5% to trade at around $75.91 per barrel when reports last came in.
आइए अब चलें कारोबार के अंतिम चरण में सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना बढ़त के साथ चल रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.54% बढ़कर 79,330 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.5% बढ़कर 92,070 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी।
Very briefly, very briefly, what is your expectation in the coming days?
On gold?
Yeah, not on the market.
Market, I would still see this would remain range
the
bound.
Volatility.
Yeah, volatility would be there, and I would see because as Trump impact or whatever, no things. But I think one factor which would we need to keep in account is the budget.
Okay.
So decide the course of our markets.
जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना
चाहेंगे। Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close the headlines, benchmark domestic indices plunge amid sell-off across all sectors. Sensex slips below 76,000. Nifty sheds 320 points. U.S. President Donald Trump signs slew of executive orders after assuming office, lifts restrictions on mining, encourages fossil fuel production. Over 4 crore Sukanya Samriddhi accounts opened in less than 10 years to empower girls across the country, and global crude oil prices declined. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.